أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاؤس کیا ہے؟ طاؤس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم کو کہتے ہیں. قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے طاؤس پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک نہ پہنچے. طاؤس پڑھ لینے سے آدمی شیطان مردود کے شر سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرو. یعنی ہر کام شروع کرنے سے پہلے جب ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، تو اس میں ایک پوری دعا ہے اور ایک پورا حفاظت کا انتظام ہے. یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور جو کام بھی شروع کرتے ہیں، جو بھی وظائف آپ شروع کرتے ہیں، تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانے کی وجہ سے شیطان مردود آپ کے کسی بھی کام میں، کسی بھی وظیفے میں خلل پیدا نہیں کر سکتا. یعنی کہ جو بھی جائز کام کے لیے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی ہمیں رکاوٹ نہیں آتی. یعنی کہ جب ایک دن پڑھا ہم نے کوئی وظیفہ، کوئی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہمارا ٹائم بھی بہت اچھا گزرتا ہے اور وہ پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے دن گزرنے لگتے ہیں تو ہمیں تھکاوٹ محسوس ہونے لگ جاتی ہے اور پڑھنے میں مطلب مجبوری لگتی ہے پڑھنا، اور مشکل محسوس ہوتی ہے کہ یہ تو پہلے دن ہم نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا اور اب ہم سے نہیں پڑھا جا رہا. تو اعوذ باللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ کا جو بھی کام ہے، جو بھی آپ کا پڑھنا ہے، جو بھی وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں یا جو بھی کام شروع کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی طرح انجام دے پاتے ہیں. آپ جیسے آپ اپنے رزق کے لیے گئے ہیں تو آپ نے دکان کا جو اپنے دکان ہے یا اپنے آفس میں گئے ہیں، پہلا قدم رکھا ہے، دروازہ ڈور کھولا ہے، تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے اور اس کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے اور جو دن بھر کا شر ہے وہ آپ کو نہیں مل آپ کو شر تکلیف نہیں دے سکے گا. السلام علیکم ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک کہانیوں کا سلسلہ چلا رہے ہیں، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کے لیے آج ایک اور نئی کہانی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے ایک ٹکڑا بادل. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک دن تھا بہت پیارا، کتنا پیارا کیسے بتائیں. اچھا سمجھ لو جیسے ہمارا دیش، اس میں ایک خوبصورت ہری بھری شاداب وادی تھی. نرم نرم گھاس چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، گھاس پر رنگا رنگ ننے منے پھول کھلے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی ندی کل کل کرتی بہتی دور کہیں پہاڑوں سے اتر کر اٹلاتی البیلی چال سے چلتی ہوئی یہاں تک آئی. ایسے چال کے لگے کہ کوئی پیاری سی لڑکی گھنگھرو باندھ کر ناچ رہی ہو اور اس کا سفید باریک ریشمی دوپٹہ ہوا میں اڑ رہا ہے. سچ ندی کا پانی جب کناروں سے پتھروں سے ٹکراتا ہوا سفید جھاگ اڑاتا اور بالکل ایسا ہی لگتا ہے. اور پتہ ہے یہ ندی کہاں بہتی تھی؟ بیچ جنگل میں. یہ جنگل بہت ہی گھنا تو نہیں تھا، مگر جنگل گھنا نہ ہو تب بھی خوبصورت لگتا ہے. ذرا سی ہوا چلی اور اونچے اونچے درختوں کے پتے سرسرانے لگے، ان میں لپٹی بیلیں جھومنے لگیں. درختوں پر لاتعداد چڑیائیں ہر وقت ادھر ادھر اڑتی رہتی اور چوں چوں کرتی رہتی، جیسے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں. چڑیائیں درختوں کی پتلی پتلی شاخوں پر جھولا جھولتی رہتی یا اپنے لیے طرح طرح کے خوبصورت اور مضبوط گھونسلے بناتی. یہاں شریر گلہریاں بھی تھیں جو تنے سے اونچی ڈالیوں تک دوڑ لگایا کرتی، फिर इस वादी में फूलों की तरह नरम नरम रंगारंग तितलियां भी थीं और बारिशों के मौसम में लाल लाल मखमल जैसी बेर बेर बेड़ बूटियां भी हरी भरी घास पर घूमा करती। कभी कभी सफ़ेद खरगोश भी उछल कूद करते थे। तो भाई इस खूबसूरत जितनी जगहें वादी में दो बगले भी रहते थे जो अक्लमंद समझे जाते थे क्योंकि वो लंबी लंबी उड़ानें भरकर दूर दूर जाया करते थे। आसपास के जंगल में बड़े बड़े शहरों में और दूसरे देशों में उन्होंने ऐसे ही बहुत सी चीज़ें देखी जो जंगल के किसी बासी ने नहीं देखी। इसलिए जंगल के जानवर और परिंदे फूल पत्ते सब इन बगलों की बात माना करते। ये वादी ये जंगल शहर से बहुत दूर था दूर ना था इसलिए अक्सर शहर से लोग बाग जीपों और गाड़ियों में भर भर कर घूमने फिरने और पिकनिक मनाने यहाँ आया करते थे। वो घूमते फिरते खाते पीते और कभी कभार शिकार भी करते। हिरन लोमड़ी गीदड़ खरगोश जो जानवर नज़र आ जाते उसे वो अपनी बंदूक का निशाना बना लेते। दरख्तों के कच्चे पक्के फल और पत्तियां नोच लेते। धीरे धीरे ये वादी उजड़ने लगी सुनसान वीरान होने लगी। खरगोश गीदड़ लोमड़ी हिरन जान बचाकर इधर उधर छुपने लगे बल्कि जिस जिस की हिम्मत हुई वो जंगल छोड़कर चला गया। चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया और तितलियों ने उड़ना और गिलहरियों ने दौड़ना। बादलों ने भी अपना रुख बदल लिया। इनको बुलाने के लिए जब वहाँ चिड़ियाँ ना होती तितलियाँ अपना नाच नहीं ना दिखाएं, ज़रा झूम झूम कर इनकी बाहें ना पकड़ें तो बादल वहाँ क्यों आएंगे क्यों रुकेंगे। सारे बादल उड़ गए वादी वीरान हो गई दरख्त सूख गए इनके पत्ते पीले होकर गिरने लगे। पुराने पत्तों की जगह नए पत्तों ने नहीं आए। घास भी सूख कर पीली पड़ गई फिर फूल मुरझा गए। खरगोशों को खाने को कुछ ना मिला तो वो सूख कर कांटा हो गए। लोमड़ी हिरन सब बीमार दुबले पतले और कमज़ोर हो गए। तब एक बगले ने दूसरे बगले से कहा चलो दोस्त हम भी कहीं चलें। बगले की एक पक्की दोस्त थी मकड़ी। वो बोली क्या मुझे छोड़ जाओगे। बगले ने कहा नहीं तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। गिलहरी दौड़कर इस ऊंची शाख तक आ गई जहां बगले बैठे थे और मुझे मेरे दोस्त तुम्हें तो हम छोड़ ही नहीं सकते। नन्ही गिलहरी इस वक्त दुबला पतला कमज़ोर खरगोश लड़खड़ाता हुआ आया और उसने पूछा मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे भाई बगले। बगले ने धीरे से जवाब दिया तुम्हें कैसे ले जा सकते हैं तुम तो बहुत दुबले और कमज़ोर हो गए हो। और मैं हिरन ने रोते हुए पूछा तुमसे तो एक कदम भी चला नहीं जा रहा तुम हमारे साथ कैसे जा सकते हो। लोमड़ी भी झट सामने आ गई क्या तुम भी जंगल छोड़ना चाहती हो। हाँ छोटे भैया बड़े भैया अब जंगल जंगल कहाँ रहा है भाई बगले सब सूख गया है। देखो हमारी प्यारी नदी तक में भी पानी नहीं। वो देखो पत्थर दिखाई दे रहे हैं वो ना अब नाचती गाती है ना उछलती है बस एक बीमार कमज़ोर बूढ़ी की तरह हर वक्त लेटी रहती है। थोड़े दिनों में इसका इतना पानी भी सूख जाएगा तो नदी मर जाएगी बिल्कुल गायब हो जाएगी जैसे हमारी तितलियां गायब हो गईं। गिलहरी ने बड़े दुख से कहा और चारों तरफ देखने लगी कि शायद एक इधर तितली कहीं उड़ती हुई या किसी फूल के साथ चिपकी हुई दिखाई दे जाए लेकिन वहाँ एक भी तितली ना थी। इसमें फूल ना था एक भी फूल ना था घास ना थी फिर पेड़ बूटी ना थी सब कुछ सूख गया जल गया उजड़ गया। चलो दोस्तों बगले ने अपने साथी से कहा। इसके साथ बगले ने जवाब दिया
हम ये वादी छोड़कर नहीं जाएंगे, मगर हमें जाना तो पड़ेगा, वरना इस सूखी वादी में तो हम मर जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस वादी को फिर से हरा भरा बना दें, ताकि सब कुछ पहले जैसा खूबसूरत हो जाए और सब दोस्त पहले की तरह मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगें। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक पानी ना बरसे वादी सरसब्ज व शादाब नहीं होगी, दरख्तों पर नए पत्ते नहीं आ सकते, फूल नहीं खिलेंगे, घास नहीं लहराएगी और नदी उछल उछल कर नहीं बह सकती। मकड़ी बोली, तो चलो पानी बरसा दें। हम पानी कैसे बरसा सकते हैं? पानी तो बादलों में होता है और इस वादी के आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं। हाँ ये तो है, अब क्या हो सकता है? बगले ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर पेड़ होते तो बादलों को उड़ने से रोक लेते। हाय अफसोस, दूसरे बगले ने रोते हुए कहा और उनके आंसू गिरने लगे टप टप। इसको रोता देखकर चिड़िया भी रोने लगी, गिलहरी भी रोने लगी, लोमड़ी, हिरन, नदी सूख गई, गायब हो चुकी थी, वो भी सिसकियां लेने लगे। सबको रोता देखकर मकड़ी बोली, ना रो मेरे दोस्तों, ना रो, हम सब तुम सब को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आओ भाई बगले, कुछ तरकीब सोचें। हाँ सब मिलकर कोई रास्ता निकालें, लोमड़ी ने कहा। रास्ता बस एक है, हम सब वहाँ चलें जहाँ पेड़ हरे हों, घास हरी हो, फूल खिले हों, तितलियाँ नाचती हों, चिड़ियाँ गाती हों। भाई बगले, तुम तो दूर दूर तक उड़कर आए हो, देश देश जाते हो, तुमको ऐसी जगह मालूम है? दोनों बगले सर जोड़कर सोचने लगे। सोचते रहे फिर एकदम बोले, हाँ एक ऐसी जगह तो है, यहाँ से दूर बहुत दूर एक वादी है, खूबसूरत हरी भरी, जैसे पहले कभी हमारी होती थी। वहाँ एक जंगल है, ऊंचे ऊंचे दरख्त से भरा हुआ, जैसे पहले हमारा जंगल था। एक नदी है, चीख चंचल सी, उछलती बलखाती बहती हुई, जिसे कभी हमारी नदी बहा करती थी। वहाँ खरगोश चिड़िया हैं और तितलियाँ भी, हिरन भी, और खरगोश भी और गिलेरियाँ भी। हाँ हाँ चलो चलो, हम सब वहीं चलते हैं, मगर मैं तो कहीं नहीं जा सकती, सूखी नदी ने रोकर कहा। मेरे पैर तो मेरी धरती में हैं, धरती में गड़े हुए हैं, और हम भी कहीं नहीं जा सकते, पहाड़ों ने कहा। हम इतने लंबे चौड़े हैं कि हम हिल भी नहीं सकते, हमारे पैर भी धरती में गड़े हैं। वो दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और रोते रोते नदी बोली, अब कहो क्या तुम हम दोनों को छोड़ के चले जाओगे? तुम जिनके पास पंख हैं, जो उड़ सकते हैं, क्या उड़कर दूसरे देश चले जाओगे? सब लोग चुप हो गए, बगलों ने सर झुका लिया, गिलहरी जहाँ थी वहीं रुक गई, हिरन और लोमड़ी भी बगले के पास आकर खड़े हो गए। सब ने कहा, नहीं हम नदी को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। मगर कैसे? हिरन ने पूछा। थोड़े दिनों में तो हम भूख से मर जाएंगे, ये सुनकर तितली जोर जोर से रोने लगी। हाँ जब फूल सूख जाएंगे तो हम सब तितलियाँ मर जाएंगी, देखो हमारे परों के रंग अभी से उड़ने लगे हैं। हाँ मैं भी मर जाऊंगी, दरख्तों पर फल ना होंगे तो हम क्या खाएंगे? चिड़िया ने रोते हुए कहा। फिर सब ने रोते हुए कहा, हम ऐसे नहीं रह सकते, कोई ना कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी भाई बगले। दोनों बगले सर जोड़कर बैठ गए, मकड़ी भी इनके साथ थी और गिलहरी भी। थोड़ी देर में एक बगला खुशी से चिल्लाया, तरकीब समझ में आ गई, हाँ बात बन गई। सब खुशी से नाचने लगे, मगर क्या, ये कि हम दोनों बगले अपनी पीठ पर मकड़ी गिलहरी को लेकर दूर देश जाएंगे, जहाँ बहुत से बादल होंगे, बहुत घने और काले। गिलहरी अपनी तेज़ दांतों से बादल का एक टुकड़ा जल्दी जल्दी कुतरे और मकड़ी इस बादल के चारों तरफ जाला तान ले। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा मजबूत जाल के बादल इसमें से निकल ना पाए, ऐसा लगे कि उसे किसी ने रस्सी से जकड़ दिया है। फिर एक तरफ से भाई बगले और दूसरी तरफ से मैं जाकर अपनी चोंच में पकड़ लेंगे और उसे खींच खींच कर उड़ा उड़ा कर धीरे धीरे अपने देश में ले आएंगे और पहाड़ों के पास लाकर छोड़ देंगे। बादल बरस पड़ेंगे, नदी में पानी भर जाएगा, घास हरी हो जाएगी, पेड़ों पर नए पत्ते फूटने लगेंगे, नए नए फूल खिल जाएंगे, तितलियाँ गाएंगी, चिड़ियाँ चहचहाएंगी, हिरन चौखड़ियाँ भरेंगी, खरगोश उछल उछलेंगे कूदेंगे और नदी लहराएगी। पहाड़ हम सबकी संतरी बनकर हमारी हिफाजत करेगी। हाँ हाँ चलो हम चारों चलें और बादल का एक टुकड़ा ले आएं। चलो चलो दो चार बोले, वो चारों बोले, जाओ जाओ भाई बगले, सबने एक साथ कहा, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे और तुम लोग बादल लेकर आओ, हम सब दुआ करेंगे और तुम्हारी राह तकेंगे। वो चारों दूर देश गए। बगलों ने बादलों से दोस्ती कर ली और अपनी वादी की हालत बताई। गुलेरी ने तेज तेज दांतों से बादल को कुतरना शुरू किया। ये कोई आसान काम न था। वो एक तरफ से बादल को कुतरती थी तो दूसरी तरफ से बादल फिर झड़ जाता था, जुड़ जाता था। बड़ी मुश्किल से वो बादल को एक टुकड़े बड़े बादल से कट कर अलग कर पाई। इसकी इर्द गिर्द मकड़ी ने जल्दी जल्दी जाल बनाना शुरू कर दिया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तब दोनों बगलों ने अपनी अपनी चोंचों में बादल का एक एक सुरील सिरा लिया और अपनी पीठ पर मकड़ी और गुलेरी को बिठाया और धीरे धीरे अपने देश की तरफ उड़ने लगे। उड़ते उड़ते बादल को खींचते खींचते अपने देश ले गए। बादल बरसा, सूखी नदी पानी से भर गई और चंचल लड़की की तरह उछलने बल खाने लगी। पेड़ों पर नए नए पत्ते मुस्कुराने लगे, घास हरी होकर झूमने लगी, फूल खिलाकर हंसने लगे और सब पहले की तरह मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे, इस देश में रहने लगे। हाँ, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी अपने मुल्क का, अपने लोगों का, अपने देश का, अपने मुल्क के लोगों का ख्याल रखना चाहिए और अपने मुल्क को उजड़ने से बचाना चाहिए, ना उसको खुश होने देना चाहिए और सब्ज़ा ज़रूर अपने मुल्क में हमें लगाना चाहिए। जज़ाकअल्लाह।